نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے ساتھ ہم دور قرآن 2017 کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک حرف کو اپنے اوپر لینے کی توفیق دے ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی سے ہی کریں اس پہ غور و فکر کریں اور پھر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اس سال کے دور قرآن کا بنیادی تھیم ٹائم مینجمنٹ ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر ایک یہی شکوہ کرتا ہوا دکھتا ہے کہ وقت نہیں ملتا میں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے بھی یہی بات سنی کہ وقت نہیں ملتا ہمارا وقت کدھر گیا ہم آج کدھر کھڑے ہیں کیا 24 گھنٹوں کو کم کر کے آج کے دور میں 20 گھنٹے کر دیا گیا کیا آج ہماری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی حالانکہ مشاہدے کی بات ہے کہ پہلے تو ہاتھوں سے کام کرتی تھی خواتین اب تو مشینیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلوایا تھا کیوں تاکہ وہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن سے آزاد ہو کر اللہ کے کلام کو جذب کرے تو یاد رکھیے یہ قرآن بظاہر تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان پڑھتی ہے لیکن در حقیقت یہ قرآن ہمارا دل لیتا ہے اسی قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے اس قرآن کو دل پر لیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا علامہ اقبال کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ یہ آج تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات میں بھی یہی کہتے ہیں سورۃ انفال کے اگر بالکل شروع میں دیکھیں تو ایمان والوں کی صفات جو بیان کی گئیں اس کے اندر ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں آئیے ذرا میں اور آپ اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کیا ہمارا دل اس کتاب کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہے کیا ہم اس سمندر کو پینے کے لیے تیار ہے آپ سب سسٹرز نے کہیں نہ کہیں دنیا کے مختلف سبجیکٹس پڑھے ہوں گے تبھی ہم کسی جگہ پہ پہنچے یاد رکھیے دنیا کی ہر کتاب کا پڑھنا اس کتاب کے پڑھنے سے مختلف ہے کیوں اس لیے کہ بل ہوا کلام اللہ دنیا کی چیزیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن روح کی غذا ہے اللہ کا کلام ہے اس وقت میں بول رہی ہوں اور آپ الحمدللہ اتنے سکون سے سن رہے ہیں تو جب ایک انسان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ بات کرے تو دوسرا اس کی بات کو غور سے سنے تو جب مالک کائنات کی بات ہو رہی ہو تو پھر کیا اس کا حق نہیں کہ ہم اس کو غور سے سنیں اس لیے اس وقت ہر وہ ایک چھوٹی سی آواز ایک وسپر ایک اندیشہ ایک خیال ایک وسوسہ جو آپ کو اس کتاب سے دور لے جائے تو اس کو دور کر دیجیے شرک یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے سامنے ماتھا رگڑے یہ پہلے دن نہیں ہوتا شیطان جو ہمارے دل کے ارد گرد سینے میں رہتا ہے اور ہر وقت جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے उसकी पूरी कोशिश होती है। कुछ लोगों को तो उसने घर में ही रोक लिया, कुछ के दिलों में डाउट्स डाल दिए, कुछ को कहा तुम मसरूफ हो, कुछ को कहा कि अभी रमजान आएगा तो ज्वाइन करेंगे, कुछ को उसने किसी दुनिया के और मसले में उलझा दिया। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इन सारी कोशिशों को दूर करते हुए यहां पहुंच गए। लेकिन याद रखिए, अभी भी आप और मैं सिक्योर नहीं है। कमिटमेंट किसी ने सीखनी हो तो शैतान से सीखे। वो किस तरीके से हमारी नेकियों को उचकता है, वो किस तरीके से हमारे लिए ये चीजों को लेता है कि वो यहां बैठकर भी हमारे लिए इस सुनने में कई रुकावटें लाएगा। पहले से अब थक के आए, अब यहां आके कुछ को कहेगा घर में पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चे आ गए स्कूल से कि नहीं, अच्छा पहुंच गए होंगे, अच्छा वो कोई मेहमान ना आ जाए, आज रात को क्या पकाऊंगी। ये उसके चोर दरवाजे हैं। तो अभी दिल के शऊर के साथ कहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। के अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं। थोड़ा सा आपको इस साल के दौरे कुरान का तारुफ करवा दूं, फिर बराह रास्त आपको सूरत फातिहा पे ले चलूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा देर आपके और इन अल्फाज के बीच में नहीं रहना चाहती। हमारा हक बनता है कि हम इस वक्त का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कुरान पाक के टेक्स्ट को समझने में गुजारें। तो आज के दौर में जहां बाकी बहुत चीजें बढ़ गईं, वहां वक्त कम हो गया। तो वक्त की कमी का शिकार हर एक दिखता है। इंशाल्लाह हम इस साल कुरान पाक की आयात की रोशनी में अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए और बहुत सारे लोगों के तजुर्बात से फायदा उठाते हुए इंशाल्लाह ताला अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीखेंगे, क्योंकि वक्त क्या है, जिंदगी है। आइए शुरू करते हैं सूरत अल फातिहा से। एक बार 5 सेकंड के लिए खामोशी में रखूंगी। इसका मकसद क्या है, क्या आप अब इस कलाम की आयतों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला, रोजे जजा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनका नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और उनका भी नहीं जो भटके हुए हैं। अल्लाह का कुरान, अल्लाह सुबहान तआला का ये कलाम सूरत अल फातिहा से शुरू होता है। तरतीब के एतबार से पहली सूरत है, कुरान पाक का इंडेक्स कह लीजिए। ताल्लुक बिल्ला की पहली सीढ़ी हमें इस वक्त सूरत अल फातिहा की सूरत में दिखती है। सूरत अल फातिहा का बुनियादी नुक्ता शुक्र है। हर साल और जब भी सूरत अल फातिहा पढ़ते हैं, हम शुक्र के मुख्तलिफ एंगल देखते हैं। कभी हमने ये कहा कि शुक्र जिंदगी की शक्कर है, जो जितना शुक्र करेगा उतनी उसकी जिंदगी मीठी होगी, और जो ना शुक्र है उसकी जिंदगी में बहुत महरूमियां होंगी। आज हम सूरत अल फातिहा को पढ़ते वक्त अल्लाह की जिस नेमत का शुक्र अदा करेंगे वो क्या है, वक्त, जिंदगी। सबसे पहली दौलत हमें अल्लाह ने क्या दी, वक्त। आप सोचिए जरा अपने ऊपर। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है कि कुछ अच्छा काम करेंगे ना तो उसके बदले में नेमतें मिलेंगी। गलत है। याद रखिए, नेमत मिलने का कोई कानून नहीं है। क्यों? अगर कुछ अच्छा करने पे कुछ मिलता तो फिर जिंदगी की दौलत क्या करने पे मिली? हम सब जानते हैं इस दुनिया में आने से पहले हम कुछ नहीं थे। आज इंशाल्लाह एक आयत तदब्बुर जब आएगी तो वहां बात करेंगे, कुछ ना से कुछ बने और कुछ बहुत कुछ समझते हैं और कुछ नहीं रहते, थे हैं नहीं रहेंगे। ये तीन ही फेज है ना हमारी जिंदगी के। तो अल्लाह सुभान तआला ने हमें जिंदगी की नेमत दी। जरा सा सोचिए जिंदगी क्या है। वक्त वाले असर जमाने की कसम। इन्नल इंसान लफी खुसर। बेशक इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। कैसे खसारों में है एक इंसान कि वो इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता। कभी उस माँ से जाके पूछिए कि पैदा होते ही उसका बच्चा दुनिया से चला गया। अगर जिंदगी की कदर पूछनी है तो उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे पेट में ही खत्म हो जाते हैं। और अगर जिंदगी की दौलत की कदर पूछनी है तो उस माँ से पूछिए जिसका इकलौता बेटा 6 बेटियों का भाई था और ऐन जवानी की उम्र में दुनिया से चला गया। आज बैठ के जरा सा शऊर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तूने मुझे जो जिंदगी की दौलत दी है मैं इस पे तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरी ये नेमत है, तेरा ये एहसान है। फिर आप देखिए इंसान बनाया। अगर इंसान ना होते क्या मेरे आपके इख्तियार में था? मेंढक होते, सांप होते, बिच्छू होते, कीड़ा होते नाली में रेंगता हुआ, खटमल होते, मच्छर होते, कुछ भी हो सकते थे। अल्लाह सुभान तआला ने मुझे आपको इस जिंदगी की कदर करने का हुक्म दिया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज से सबसे पहला शुक्र इस बात का कहा करें कि अल्लाह ने जिंदगी दी। लोग कहते हैं वक्त सोना है, मैं नहीं मानती। सोना कैसी कीमती है, कभी रेट बढ़ता है कभी घटता है, चोरी हो जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है, वक्त जाके कभी नहीं आता। वो लोग वक्त को सोना कहते हैं जो मादा परस्त हैं। आप देखिए कि जो लोग अपने वक्त को दुनिया की किसी चीज से नापते हैं ना वो मादा परस्त है। वक्त दौलत नहीं है, दौलत तो आई और चली गई, वक्त तो कुछ और ही है। मैं जितना इस पे सोच रही थी मुझे उतना ही समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी, ये वक्त है क्या चीज, किस चीज से इसको रिलेट करें। आप देखिए कि आप दो टैंकियां लीजिए और उनमें पानी भर दें, एक के नीचे टूटी खोल दें, हल्की सी कतरा कतरा गिरेगा, दूसरी टंकी के नीचे कुछ ना हो, दोनों को बराबर भर के छोड़ दें, शाम को जाकर देखेंगे तो क्या होगा। जिससे सिर्फ एक कतरा गिरता था हो सकता है वो 2/3 तक खाली हो चुकी हो, और जिसमें कुछ भी होल नहीं था वो वैसे की वैसी है। वक्त वो टंकी है कि जिसके नीचे टूटी लगी हुई है और मैं और आप इसको बंद नहीं कर सकते। हम पानी के बर्तन को नीचे से बंद कर दें तो महफूज कर सकते हैं, दौलत को पैसे को इस्तेमाल ना करें तो वो बच जाता है, जमा करना चाहें तो 100 हजारों में, हजारों लाखों में बदलते जाएंगे, बट वक्त मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तूने मुझे आज तक जिंदगी की जो दौलत दी है ये बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स शहादत की मौत मरा, दूसरा उसके एक हफ्ते के बाद तबई मौत मरा। अल्लाह ताला ने एक सहाबी को ख्वाब में दिखाया कि बाद में तबई मौत मरने वाला पहले से जल्दी जन्नत में दाखिल हो गया। सवाल नबी सल्लम के पास आता है, कहा अल्लाह के नबी ये क्या, हम तो ये समझते थे कि शहीद का दर्जा ज्यादा है, ये बाद वाला उससे पहले जन्नत में क्यों दाखिल हुआ? फरमाया सिर्फ एक हफ्ते का दिन, यानी एक हफ्ता जो इसको मिला 7 डेज, उसमें जो इसने नमाजें पढ़ी, जो इसने नेकियां की और जो इसने उसमें खैर के काम किए, ये इसका दर्जा शहादत वाले के दर्जे से बढ़ा गया। हम आप बड़ी बड़ी नेकियों की तमन्ना करते हैं और डे टू डे नॉर्मल रोज की जिंदगी की नेकियां छोड़ देते हैं। तो याद रखिए अल्लाह की कदर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शुक्र सारी तारीफें उसकी हैं कि जिसने मुझे आपको जिंदगी दी। दूसरी नेमत सेहत की है, ये जिस्म जो अल्लाह ने मुझे आपको दिया। अभी आपको इंशाल्लाह एंड पे हम एक प्रेजेंटेशन की रोशनी में दिखाएंगे कि यहाँ हर दिन आपके साथ पारे की एक आयत डिस्कस की जाएगी जिसको आयत ऑफ द डे कहेंगे। दूसरा हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक हदीस शेयर करेंगे। आज की जो हदीस हमारे सामने है वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि जब वो पास होती हैं तो लोग उसकी कदर नहीं करते। क्या है हदीस, पढ़ के सुनाती हूँ। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तंदरुस्ती और फारिगुल बाली दो ऐसी नेमतें हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते बल्कि अक्सर नुकसान उठाते हैं। जरा सा गौर कीजिए, अल्लाह ने मुझे आपको नेमत दी सेहत की, कभी आपने मैंने अपने इस वजूद पर नजर डाली इस अंदाज से कि अगर मैं सेहतमंद ना होती। एक बनी इसराइली रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक बार पूछा कि अल्लाह, अगर कोई आपकी नेमतों में से सिर्फ एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? ऑफ कोर्स ईमान वाला ही है, तभी तो अल्लाह से मांग रहा है ना। जवाब आया कि सेहत मांग लें। अब ये एक बनी इसराइली रिवायत है, चाहे आप इसको रिवायत समझें, कॉल समझें, कुछ भी ना समझें, लेकिन क्या सेहत इंसान के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा नहीं है? अल्लाह सुबहान तआला ने जितनी मोहब्बत और मंसूबा बंदी यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जिस्म को वजूद बख्शा है, मैं चंद हिंट्स आपके सामने रखूंगी, हैरान रह जाएंगे आप, फिर दिल की गहराई से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहली चीज, जब एक बच्चा दुनिया में आता है उसके साथ 4000 बीमारियां भी पैदा होती हैं। ये बीमारियां उसके जिस्म के अंदर दौड़ती रहती हैं और ये बीमारियां उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा करती हैं, रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, और कुछ अरसे के बाद जब हमारे जिस्म में इन बीमारियों को रेजिस्ट करना या इसको ठीक करना पैदा हो जाता है तो वो सब बीमारियां दब जाती हैं। आपको मुझे पता था, पैदा होता बच्चा, हम कहते हैं इसको जरासीम भी ना लगे, इसके नाक पे मक्खी भी ना बैठे, ये जरासीम लेकर आया तभी आज तक जिंदा है। फिर इसी तरह हमारा मुंह हर रोज ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं। अब जब हम तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, हम तेज तेज सांस लेते हैं, उस सांस लेने से वो जो जरासीम अंदर है ना वो मर जाते हैं और हमारा दिल मजबूत हो जाता है। ये किसका निजाम है? अल्लाह का। कहिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज जहां वक्त की कमी का शिकार है ना लोग, वहां सेहत की कमी का भी शिकार है। बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से बेचारे इबादत का भी खुशू नहीं रखते। फिर इसी तरह आपको पता है कि दुनिया में पहला बाईपास ऑपरेशन यानी जिसमें दिल की नालियों को दूसरी तरफ कर दिया जाता है, मई 1960 में हुआ। लोगों को उससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि क्या ये भी हो सकता है कि कुछ नालियां डैमेज हो जाएं तो उसको उधर से निकाल कर उधर कर दिया जाए। अब सवाल पैदा हुआ कि ये नाली जो काटी जा रही है इसकी जगह दूसरी कहां से लगाई जाए। बात समझ रहे, सेम साइज की सेम किस्म की लगानी होती है जिसमें में बहुत किस्म की नालियां हैं। उस वक्त फिर डॉक्टर्स की रिसर्चेस ने ये साबित किया कि अल्लाह सुबहान तआला ने हमारी पिंडली, ये जो टांग होती है ना, इसके अंदर जितनी नालियां हैं उसमें एक नाली एक्स्ट्रा लगाई हुई है, सबकी है। क्यों? कि 1960 में जब तुम पहला बाईपास ऑपरेशन करोगे तो वो नाली काट के दिल के साथ जोड़ लेना। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये डॉक्टर्स को पता था। फिर इसी तरह से आपको पता है कि दुनिया में पहला गुर्दा ट्रांसप्लांट कब हुआ? 17 जून 1950 में, 1950 आज से कितने साल पीछे, हिसाब लगा लीजिए 77 ईयर्स पीछे की बात है। पहली दफा 17 जून में गुर्दा बदला गया था। अब सवाल पैदा होता है कि दो गुर्दे हैं जिस्म में, आपने तस्वीर तो देखी हुई है ना, अब दो गुर्दे तो ऑलरेडी हैं, तीसरा कहां लगाया जाए? उस दिन अल्लाह सुबहान तआला की इस कुदरत का लोगों को पता चला कि दो गुर्दों के बीच में एग्जैक्टली इतनी जगह अल्लाह ने खाली रखी हुई है जहां तीसरा गुर्दा लग जाता है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है कोई हमारी इतनी फिक्रें करने वाला? है किसी को मेरी इतनी परवाह? फिर उसको छोड़कर लोगों के पीछे भागती हूँ, फिर उसको छोड़कर औरों की तारीफें करती हूँ, ये मेरी ज्यादती है। याद रखिए, अल्लाह के गुण गाइए, लोगों के पीछे ना फिरें। हम सारी जिंदगी लोगों की तारीफें लेने के लिए एड़ियां उछालते हैं, झूठ सच बोलते हैं, गुनाह की दावतें मानते हैं। हम उनकी नाफरमानियों को अपने नाम पे लिखा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। फिर आप देखिए जो हमारी पसलियां हैं, जिसको रिब्स कहते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कुछ पसलियां बेकार होती हैं, कुछ नहीं करती। डॉक्टर्स हमेशा इस पे परेशान होते थे कि अल्लाह ने ये लगाई क्यों है, और ये राज किस दिन खुला, जब चंद बच्चे ऐसे पैदा हुए कि जिनके नरखरे, नरखरा होता है ना, सांस लेते हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। अब वो उसकी वजह से अपनी गर्दन सीधी नहीं कर सकते थे। जरूरत थी कि कोई बीच में ऐसा जोड़ लगा दिया जाए कि जिससे वो अपनी गर्दन को मूव करें। उस दिन डॉक्टर्स को पता चला कि पसली की वो हड्डी यहां से काट के यहां लगा दो तो ये गर्दन मूव करने लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अल्लाह की कदर नहीं की। वो अब नॉर्मल बच्चे नॉर्मल जिंदगी बसर करने लगे। फिर इसी तरह आपको पता है जिगर, लेवर, जिस्म का एक ऐसा उज्व है, पूरा भी काट के फेंक देना दोबारा पैदा हो जाता है। ये अल्लाह तला की कुदरत है। और जिगर एक ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हैं बादशाह। हमारे जिस्म का जिगर खराब होता है फिर हम जिंदा नहीं बचते। अब अल्लाह ने इसको दोबारा दूसरी तरफ क्यों कर दिया, ताकि अगर जिंदगी में किसी का जिगर काट भी दिया जाए तो वो दोबारा भी जिंदगी को पाने के काबिल हो जाए। तो याद रखिए, हमारा जिस्म कई ऐसे मौजजात से भरा हुआ है कि जिस पे गौर व फिक्र करते जाएंगे तो हमें इस बात का यकीन होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के बाद अपनी आदत बनाए कि मैंने शऊर के साथ अपने सेहतमंद होने का, चलने का, फिरने का, बोलने का शुक्र अदा करना है। आज से हर नमाज में जब सूरत अल फातिहा पढ़ेंगी तो अपनी सेहत की कदरदानी करते हुए दुआ करेंगी कि अल्लाह ताला तो मेरी सेहत को सलामत रखना। अगर आप सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक अपनी सेहत का तहमीना लगाएं तो आपको हैरत होगी कि हम में से हर एक अरबपति है। हम मिलियनेरियंस एंड बिलियनेरियंस हैं। क्यों? कि दुनिया में एक गुर्दा कई लाखों का खरीदते हैं लोग। और आपको पता कि हमारी पलकें, आंखों के आगे बाल, इसमें चंद मसल होते हैं। ये मसल हमारी पलकों को उठाते हैं फिर गिराते हैं। ये मसल्स अगर जवाब दे दें काम करना तो हम अपनी आंखें नहीं खोल सकते, छपक नहीं सकते। दुनिया का 50वां अमीर तरीन शख्स, यानी दुनिया में नंबर लिख गया जाए, यानी कह लीजिए कि दुनिया के अमीर तरीन 50 लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला है कि वो अपनी पलक नहीं झपक सकते। डॉक्टर्स को और सर्जन्स को करोड़ों डॉलर्स देने को तैयार है। क्यों? कि हमारी ये पलकें खुद ब खुद झमके। और मैंने एक आर्टिकल कहीं पढ़ के सुनाया था कि ऐसे एक शख्स से पूछा था कि बताओ तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बार खुद ब खुद पलकें झपकूं। वो मांग रहा है जो आपको मुझे दिन में हजारों बार मिलता और हमें एक बार भी उसका एहसास नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है, पारा नहीं होता जैसे मरकरी, इसकी तरह का लिक्विड होता है। इस माया की वजह से हम सीधा चलते हैं। अगर ये कतरा हमारे कानों से गिर जाए तो हम जब चले ना तो हम टेढ़े चले, पांव रखे वो इधर चला जाए। जैसे कभी आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं बदल जाती, आप कह लीजिए कि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट इन कानों में रखे हुए एक लिक्विड, एक कतरे के बराबर है। जब वो हटता है तो उसकी वजह से हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, ठीक थे अपनी जिंदगी में और अब क्या, खड़े खड़े गिर जाते हैं। सिर्फ इतना सा 3 इंच का कदम नहीं कर सकते, और 1 सेकंड के लिए ही होता है, और वो जहां खड़े गिर जाते हैं वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो आप बाथरूम में अकेले नहीं जा सकते, कोई पता नहीं वो कहाँ गिर जाए। तो याद रखिए, गुर्दे को 30-40 लाख रुपए में दें, आंख का एक कर्निया लाखों रुपए में बिके, दिल की कीमत करोड़ों में चली जाए, एड़ी में दर्द हो जाए, आप लाखों रुपए देकर अपनी एड़ियां बदला लें, अपने घुटने बदला दें, जिस रब ने आपको मुझे ये सब दिया फिर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफें करिए उस रब की। फिर इसके बाद आप देखिए, जब बंदा रब की तारीफें करता है तो उसके बाद फिर उसकी जुबान पे बात क्या आती है, क्या मालिक तू है सबसे बड़ा, तू दुनिया में भी मेरे कामों को करने वाला है तो मेरे आखिरत के मामले भी संवार देना, मालिक यौम दीन। फिर बंदे को इस चीज का एहसास होता है कि जिस तरह मैं दुनिया में रब से बेनियाज नहीं रह सकता, इसी तरह मैं आखिरत में भी बेनियाज नहीं रह सकती। और जब एक बंदा अल्लाह पर नजरें लगा लेता है ना, तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे अपने रब की एक एक कदम पे जरूरत है। और जब मांगने की चीजें आई तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ। अक्सर हम किस चीज के लिए फिक्रमंद होते हैं, यानी अपने वजन के लिए मुझे परेशान रहते हैं, आज क्या पकेगा। अक्सर हमें फिक्र है बच्चों के रिश्तों की, घर बड़ा घर छोटा। कितने लोगों को हिदायत की फिक्र है, याद रखिए सब दुआओं में से खूबसूरत दुआ हिदायत की दुआ है। क्योंकि हिदायत के बगैर जिंदगी बेकार है। गाड़ी है चलानी नहीं आती, क्या करेंगे उसको। कंप्यूटर है ऑपरेट नहीं करना आता, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। हिदायत क्या है कि जिंदगी गुजारने का ऐसा खूबसूरत तरीका दे दे कि जिस पे चलते चलते इस दुनिया से भी कामयाब होके गुजरूं और आखिरत में भी तुझे राजी कर लूं। और याद रखिए गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हिदायत एक हदीया, ये तोहफा है, ये अपने बच्चों को दीजिए। महरूम ना कीजिए अपनी नस्लों को इस तोहफे से, अपने घर वालों को हिदायत के इस तोहफे से महरूम ना करें, अपनी दोस्तों को इस हिदायत के तोहफे से महरूम ना करें, अपने प्यारों को इस हिदायत के सफर में साथ लेकर चलें। क्योंकि ये सफर तन्हा नहीं कटता, दूर तक जाना चाहते हैं प्यारों को साथ लेकर जाएं, तेज चलना चाहते हैं चल पड़े अकेले, सब छोड़ देंगे आपको। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ सिखाती है कि जब बंदा बंदा बनता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसको गम लग जाता है कि अल्लाह तुम मुझे अपनी लिस्ट में से निकालना देना। और फिर एक वक्त आता है कि बंदा अल्लाह के साथ ऐसे ताल्लुक जोड़ लेता है कि सबसे बेनियाज हो जाता है। याद रखिए सूरत फातिहा को अगर एक दफा दिल से पढ़ ले तो ये हो नहीं सकता कि आंख गीली ना हो और दिल मगमूम ना हो। हम दिन में 17 से ज्यादा बार इस सूरत को पढ़ते हैं, नमाजों में सिर्फ, इसके एक्स्ट्रा पढ़ें ये तो और ही बात है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सूरत फातिहा अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक है। और देखिए जो सूरत का इख्तिताम है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है, ये जिंदगी की शाहरा है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया की रोड पे तन्हा ना छोड़ना, मिसलीड ना करना। आज छोटी छोटी बात पे सिराते मुस्तकीम को छोड़ने वाले, लड़खड़ाने वाले कल पुल सरात पे लुढ़क जाएंगे। लिख ले एक जुमला, फायदा होगा। जिंदगी की सिराते मुस्तकीम आखरत की कपुल सरात है, वहां भी लोग लुढ़केंगे, वहां भी इधर से उधर गिरेंगे। जितना आज दुनिया में इस सिराते मुस्तकीम को थामेंगे आखरत पे जमे रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि आखरत की घाटियों में मुश्किल तरीन चीजों में से एक चीज पुल सरात है। लोग वहां गिर गिर के जहन्नुम में गिरेंगे, जहन्नुम के ऊपर है, सूरत मरियम में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल्स। किसी को दूर तक का नूर मिलेगा और किसी को एक खजूर तक का नूर मिलेगा, और जिसको सबसे कम रोशनी मिलेगी वो उसके पांव के अंगूठे पे होगी टुम टुम टुमाती हुई। दुनिया में जिसकी नेकियों का नूर दूर तक गया उसकी पुल सरात पे रोशनी दूर तक जाएगी। सूरत हदीद में तो पूरा मंजर है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कुछ दिन तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आज जिंदगी में हिदायत के सफर को कभी ना छोड़िए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अव्वल तो ये मिलती नहीं है, मिल जाए तो ठहरती नहीं है। मैं अपने दिल से एक जुमला बोलती हूं, हिदायत एक आइस बॉल है, बर्फ का गोला, बनाना भी मुश्किल, या कभी शौक में बना भी लें थामना कितना मुश्किल है। स्लिपरी बॉल है, फिसलने वाली ये गेंद है, क्यों हाथ में नहीं रहती। तो ये हिदायत की तड़प थी जो सहाबा को रुलाती थी। उमर फारूक कहा करते थे अगर मेरा एक कदम जन्नत में और एक कदम जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा जब तक मेरे दोनों कदम अंदर ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हिदायत का ताल्लुक मजबूत कर दे। हर सेशन के अंदर थोड़ा सा मुहासबे का नुकता शामिल करेंगे। सूरत फातिहा के अंदर से कुछ मुहासबे के नुकते लिखिए। क्या मैं शऊर से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ? क्या मैं शऊर से अल्लाह की तारीफें करती हूँ? क्या मुझे अपनी जिंदगी की नेमत पे शुक्र करने का मौका मिलता है? और क्या हकीकत में मैं अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन समझती हूँ, और क्या मैं बंदगी के रंग में रंगी हूँ, क्या मैं जानबूझ के हिदायत के रास्ते से तो नहीं उतरती, क्या मुझे हिदायत एक तोहफा लगती है। इसमें जितने जुमले लिख सकते हैं लिख लें, नहीं लिख सकते दिमाग से टकराने दीजिए। और क्या हकीकत में मैं दुआलीन और मखदूब बन के तो नहीं जी रही। दुआलीन कौन है? जो बेइल्म रहते हैं, और मखदूब वो है जो इल्म लेकर भी अमल नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी इस्लाह की तौफीक दे।